ओम छन। हम सभी का ब्राह्मण जीवन तपस्वी जीवन है। न केवल तपस्या के 14 मास थे, बल्कि हमारा संपूर्ण जीवन ही तपस्वी जीवन है। और सभी बाबा के बच्चों ने सच्चे दिल से तपस्या की है ना। सभी ने जोर तो लगाया है, अपनी तपस्या की रिजल्ट भी बाबा को दी है, पेपर भी आप सभी को मिला है। आज हम तपस्या के कुछ ऐसे स्वरूप पर चर्चा करेंगे जिससे हमें स्वयं भी अपने में संतुष्टि हो, एक आईना मिले कि हमारी तपस्या कहाँ तक सफल हुई। किसे हम असली तपस्या कहेंगे? सबसे पहली चीज जो मुझे ख्याल में आई, बाबा को हम सब ने जान लिया है, उससे योग भी लगाया जा रहा है। किसी ने 4 घंटे लगाया, किसी ने उससे कम, किसी ने ज्यादा, परंतु हमारी तपस्या की सफलता इस बात पर आधारित है, इस बात से सिद्ध होगी कि हमें बाबा अपना नजर आता है। ऐसा लगता है कि भगवान हमारा है, बहुत नजदीक है, या वही दूरी बनी हुई है जो भक्ति में बनी हुई थी, जो शास्त्र पढ़ने से महसूस होती थी, वो कहीं दूर, हम कुछ बहुत छोटे से, बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता था। ये अंतर कितना मीठा है। लगता है कि बाबा तो अपना है, ये अपनापन बढ़ जाना, अपना नजर आए वो, अपनेपन की फीलिंग हो, जो बाबा ने पीछे कुछ मुरलियों में कहा, उसकी मदद का हमेशा अनुभव होता रहे। मदद केवल मांगते न रहें भक्तों की तरह, मदद के पात्र बन जाएं, लगे जीवन में कि हमारी सभी समस्याएं बाबा हर रहा है। जो हमारा अपना है वो हमें विघ्नों से, परिस्थितियों से मुक्त कर रहा है। इस बात पर जरा हमें गहराई से ध्यान देना है, चिंतन भी करना है और बाबा को और समीप अनुभव करना है। परंतु कैसे करें? अपने हाथ में तो नहीं है कि कह दें कि बाबा तुम हमारे समीप हो और समीपता का अनुभव हो जाएगा। क्या करें हम जो बाबा हमें अपना नजर आने लगे? सोचो जरा, क्या करें जो वो हमें अपना नजर आए? पूरी रीति से पालन करें उसकी आज्ञाओं का, अपना नजर आए, तब तो उसे हम नजर आएंगे कि हम उसके हैं। हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो उसे लगेगा कि ये मेरे हैं, जो मैं कहता हूँ वो मानते हैं। और हमें बाबा नजर आए अपना, तो भी ऐसे ही होगा कि जो हम उससे श्रेष्ठ कामना करें वो भी पूरी करता हो, ये अनुभव होता हो कि हमारी सभी आवाज उस तक सहज ही पहुंच रही है, सुनवाई हो रही है, तो लगेगा कि वो तो अपना है। तो किसी भी परिस्थिति और विघ्न में पहले हम औरों को याद नहीं करेंगे, जो हमें आदत पड़ी हुई है जन्म जन्म की। कोई समस्या आई तो कभी किसी को याद करते हैं, कभी किसी की ओर आंख उठाकर देखते हैं, मदद की आस रखते हैं। परंतु इस अनुभव के बाद हमें संपूर्ण विश्वास रहेगा कि जो हमारा अपना है वो हमारी सभी बातों को सरल कर देगा। ये है हमारी तपस्या का सबसे सुंदर इनाम, फल जो हमें चखना चाहिए, जिसका आनंद हमें जीवन में लेना चाहिए, जो इस ब्राह्मण जीवन का बहुत सुंदर आनंद है, श्रेष्ठ आनंद है कि भगवान हमें अपना नजर आने लगे। तो हमें संसार में किसी भी चीज के लिए इधर उधर देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जो हमारा अपना है वो सागर है, खजानों का भंडार है, सब कुछ है उसके पास। उसे छोड़कर हमें और कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन अभी तक अगर ऐसा होता है कि उसे छोड़कर इधर उधर देखते हैं हम प्राप्तियों के लिए, मदद के लिए, हमें अनुभव ही नहीं कि जो हमारा अपना है वो सर्वशक्तिवान है और उसके एक संकल्प से हमारे बिगड़े काम बन सकते हैं, हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं, इस अनुभूति की ओर हम बढ़ते चले, ये हमारी तपस्या का, हमारे ईमानदार होने का, हमारे आज्ञाकारी होने का एक प्रैक्टिकल सबूत हो जाएगा जीवन में। इस बात पर तो आप स्वयं भी चिंतन करें, क्या बाबा और हम बहुत समीप आ रहे हैं, कौन सी बातें हैं जो दूरी बनाती हैं, इस पर भी जरा विचार करें, कौन सी बातें इस दूरी को बढ़ाती हैं, कौन सी बातें हमें बहुत समीप लाती हैं, कई बातें इसमें हो सकती हैं, उस पर आप स्वयं चिंतन करेंगे। तपस्या करते करते ऐसा ना हो रहा हो कि तपस्या हमारे लिए टेंशन बन गई हो, तनाव, कि हमारा अपना जीवन बहुत व्यस्त रहता हो, हमारे पास टाइम न मिलता हो और हम मन में परेशानी महसूस कर रहे हो कि अच्छा तपस्या का मौका था, हमारे पास टाइम नहीं है, और इस डबल काम में हमारा मन कहीं चिड़चिड़ा तो नहीं हो रहा है कि तपस्या नहीं हो रही है, कितना सुंदर अवसर हाथ से जा रहा है, भगवान ने इतने वरदान देने का वायदा किया था, उसमें हमने कुछ नहीं किया है, दूसरा अपने काम बहुत बढ़ रहे हों, और दोनों के संघर्ष में हमारा मन चिड़चिड़ा होता जा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, होता है, ऐसा भी न हो रहा हो, और इसके लिए आवश्यक है जो बाबा ने अब आगे के लिए भी हमारी तपस्या के लिए हमें एक बहुत अच्छा लक्ष्य दे दिया है। याद है अब कैसी तपस्या करनी है? कर्म और योग का बैलेंस, जो अब तक भी करनी थी, ऐसा नहीं कि अब तक वो नहीं करनी थी, पूरा ब्राह्मण जीवन कर्म योगी जीवन ही है, अगर कर्म और योग अलग अलग हो जाते हैं तो दोनों का ही रस नहीं मिलता है। बैठ के योग करेंगे, जब बैठेंगे तो बुद्धि इधर उधर जाएगी, उसका आनंद नहीं, और जब योग के बिना कर्म करेंगे तो कर्म अपना प्रभाव डालेगा और कर्म हमें खींचता रहेगा, अपने अधीन बना लेगा। तो अधिकतर मनुष्य संसार में कर्म के अधीन हैं। कर्म को अधीन करने वाले ही श्रेष्ठ योगी कहलाते हैं। कर्म योगी वही बनते हैं जो कर्म को अपने अधीन कर लेते हैं, अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, अपनी इच्छा अनुसार कर्म को चलाते हैं। तो दोनों को साथ साथ करना, ये इस जीवन को सरल बनाने का तरीका है। ऐसी तपस्या हम करें और ऐसी ही सदा करनी चाहिए कि दोनों साथ साथ चले, ताकि कर्म हमें उलझाए नहीं और कर्म की अधिकता हमें चिड़चिड़ा न बनाए। अगर हमारा जीवन चिड़चिड़ेपन से मुक्त नहीं हो रहा है, चिड़चिड़ेपन का बड़ा भाई कौन सा है? कौन सा है? क्रोध। क्रोध जब छूट जाता है तो कहीं कहीं चिड़चिड़ापन होने लगता है, मन में आवेश आने लगता है, और अगर किसी तपस्वी को कोई क्रोध करता हुआ देखे तो उसको क्या कहा जाएगा? दुर्वासा ऋषि। ऋषि शब्द उसके लिए वास्तव में शोभता ही नहीं है, ये तो शास्त्रों में गलत शब्द लिख दिया दुर्वासा के साथ। दुर्वासा के साथ क्रोधी ठीक था, दुर्वासा क्रोधी, दुर्वासा ऋषि कहना तो ऋषि शब्द का भी अपमान करने जैसा है। तो कोई व्यक्ति बात बात पर क्रोध करता हो और कहने वाले उसको फिर भी ऋषि कहने का सम्मान दे रहे हो, ये तो उचित नहीं है। इसलिए क्रोध, गीता में ये बहुत अच्छे महावाक्य हैं, हम सबके लिए ही हैं, कि वो योगी जो काम और क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ है, सच्चा योगी है। हम सच्चे तपस्वी हैं, इन दोनों के वेग को रोकने में हम सफल हो रहे हों। क्रोध का वेग दिनों दिन कम होता जाए, बढ़े नहीं। आयु की बढ़ने के साथ साथ क्रोध भी बढ़े नहीं। आज की मुरली जिन्होंने सुनी उनको याद होगा, जवान कौन होता जा रहा है? रावण। शरीर बढ़ता है तो क्रोध भी बढ़ता है। बुजुर्ग होते हैं, काम कम होता है, काम ज्यादा होता है, प्रैक्टिकल करना कम होता है, क्रोध आ जाता है। विचार ज्यादा चलते हैं, हाथ पांव कम चलते हैं, क्रोध आ जाता है। दूसरे लोग कहना नहीं मानते, अनुभव ज्यादा है बुजुर्गों को, लगता है ये सब बेकार कर देंगे, क्रोध आ जाता है, चिड़चिड़ापन होता है। समझदार आत्मा जिसके पास सद्विवेक हो, ज्ञान मिला हो, ज्ञान सागर जी ने पढ़ाने आया हो, उनको त्रिकालदर्शी होने के कारण, कर्मों की गुह्य गति जानने के कारण, सबके अपने अपने भाग्य की गुह्यता को जानने के कारण, कौन सा भाव अपनाना चाहिए? जो बहुत सुंदर चीज है योगी जीवन के लिए, अडोल जीवन के लिए, जीवन की शांति और सुख के लिए, थोड़ी गहरी बात तो है, परंतु क्योंकि ये सब हमारे पास है ज्ञान, अथाह ज्ञान, तो जैसे बाबा कुछ चिंता नहीं करता, बाबा से ज्यादा अनुभवी तो कोई नहीं है, लेकिन वो अपने बच्चों को देखकर कुछ चिंता नहीं करता कि ये मेरी बात क्यों नहीं मानते, क्योंकि त्रिकालदर्शी है, इसलिए सदा ही साक्षी है। तो जो ज्ञानी आत्माएं हैं उन्हें साक्षी होते चलना चाहिए। अगर साक्षी भाव नहीं बढ़ रहा है, अगर दृष्टा हम नहीं हो रहे हैं, तो संसार की हर बात हमें उलझाएगी। ऐसा समय आ रहा है, हम सब देख रहे हैं समय की समीपता को, और जो जो समय समीप आ रहा है तो सभी के हिसाब किताब क्योंकि चुकतु होंगे, इसलिए संसार में क्या बढ़ेगा? घर घर में बढ़ेगा, घर घर में बढ़ेगा संघर्ष, जिसको गृह युद्ध कहा गया ना। गृह युद्ध कहते तो दूसरी चीज को है, पर घर घर में भी युद्ध होगा, मानसिक युद्ध, टकराव, जो युद्ध है, संबंधों में संघर्ष, और ये योगियों को भी नीचे खींचने वाला बन जाएगा। इसलिए अगर साक्षी भाव का अभ्यास न किया गया, अगर त्रिकालदर्शी स्थिति के द्वारा दृष्टा बनकर सब कुछ देखने की प्रैक्टिस न हुई, तो आत्मा उलझ कर रह जाएगी और समझ में नहीं आएगा क्या किया जाए। सारा ज्ञान होते हुए भी ज्ञान विस्मृत हो जाएगा और हमें लगेगा कि जीवन हमारा उलझ गया। तो हम आने वाले समय में अपने जीवन को उलझन से बचा पाए, ये हमारी तपस्या का एक दूसरा इनाम होगा हमारे लिए, कि हम अपने को साक्षी भाव में स्थित करते चलें। तो क्रोध के वेग को समाप्त करें, क्रोध हो या चिड़चिड़ापन हो, ज्यादा काम हो जाए, समय कम हो, चिड़चिड़ापन आ जाता है, परंतु ज्यादा काम हो और समय कम हो, क्या करें जो चिड़चिड़ापन ना आए? ये बात प्रैक्टिकल सबके सामने आती है। आप एक काम कर रहे हैं, बीच में आपको दूसरा बता दिया गया, पहले ही आप बहुत बिजी हैं, या अपने काम से थोड़े परेशान हैं, और बीच में एक दूसरा काम बता दिया गया, तो चिड़चिड़ापन आ जाएगा। क्या करें जो इस परिस्थिति से हम बच जाएं? रोज की बात है, सबके जीवन से जुड़ी हुई। एक तो ये तब होता है जब हम कार्य के बाद अपने मन में एक नई प्लानिंग बनाकर रखते हैं, जैसे भाई ये काम हम कर रहे हैं, 4 बजे तक ये काम पूरा कर देंगे, उसके बाद ये करेंगे, और वो प्लानिंग जब फेल होती दिख रही है कि इन्होंने हमें दूसरा काम दे दिया, कैसे हम वो काम करेंगे, आपने यही सोचा हो 4 बजे तक आज काम कर लें और फिर जाएंगे सेंटर पर योग करेंगे, आप जल्द जल्दी काम पूरा कर रहे हैं, और 3:30 बजे हैं, आपका काम समाप्ति होने पर जा रहा है, छुट्टी का दिन है, मेहमान आ गए, तो क्या होगा? वहां भट्टी चल रही है सेंटर पर, उसका आकर्षण है, इधर मेहमान आ गए, अब दुविधा है, कुछ कह तो नहीं सकते मेहमानों को, लेकिन अपने को कहने लगे बहुत कुछ, कोसने लगे और चिड़चिड़े हो गए। तो हमारी प्लानिंग, आगे का जो प्रोग्राम हमने बनाया हुआ है, वो अगर डिस्टर्ब होता है तो हमें उसमें भी अपने को एडजस्ट कर लेना चाहिए, एक चीज का त्याग कर देना चाहिए, तब हमारी स्थिति अच्छी होगी। किसी चीज का हमें त्याग करना ही पड़ेगा। हम चाहते हैं सब कुछ हो जाए और टाइम से पहले हो जाए, कहीं कहीं ऐसा संभव नहीं होता। कहीं कहीं जहां संभव है वहां कर लेना चाहिए, और जहां संभव नहीं है वहां एक बात को छोड़ देना चाहिए। चलो अब हमें योग में जाना था ना सेंटर पे, अब उसे हम छोड़ देते हैं। मेहमान घर में आ गए, अब योग युक्त होकर इनको चाय पानी पिलाते हैं तो योग भी हो जाएगा, मन शांत भी रहेगा, सेवा भी हो जाएगी, वो खुश होंगे, हम भी खुश होंगे। और सेंटर पे जाना भी छूटा, चिड़चिड़ापन भी आया, सेवा में भी आनंद नहीं आया, न वो खुश न हम खुश, उन्हें भी लगेगा कि कुछ भारी लग रहा है इन्हें आज। तो एक हम अपनी प्लानिंग को कहीं कहीं बदलें, जिसको बाबा ने नाम दिया है अच्छा पुरुषार्थी, वो जो हर परिस्थिति वश, हर परिस्थिति में अपनी स्व स्थिति को मोल्ड करके ठीक रखना जानता हो। लेकिन वही हो जो हमारा प्रोग्राम था, ये संकल्प आत्मा को परेशान करता है। दूसरी चीज, हमें सहज भाव से काम करने की आदत डालनी चाहिए। ये सहज भाव एक जीवन का इतना श्रेष्ठ अंग है कि अगर कोई पुरुषार्थी इसको सीख ले सरलता, तो उसका जीवन सरल हो जाए। जितनी भी समस्याएं हैं जीवन की, जितनी भी हैं, वो सब इसलिए हैं कि हमारा मन उलझा रहता है। अगर हमारा मन सरल हो जाए, अगर हमारी संकल्प शक्ति नष्ट होने से बचने लगे, तो सारी समस्याएं सरल हो जाएं, जीवन सरल हो जाए। इस बात पर भी आप ध्यान दें, और अपनी पूरी दिनचर्या में आप अपने सारे कार्यों को देखते हुए अपनी चेकिंग करें कि कहां हमारी सरलता नष्ट होती है और क्यों। सरल तो हम रहना चाहते हैं, हल्के होना चाहते हैं, परंतु कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें हल्का नहीं रहने देती, और उन सब को सहज ही हटाया जा सकता है। क्योंकि हमें अपने इस ब्राह्मण जीवन में एक बात को अंडरलाइन करके समझ लेना चाहिए कि हमारे पास सबसे बड़ी शक्ति है, कौन सी शक्ति? सबसे बड़ी शक्ति है संकल्प शक्ति। ये सब सहन शक्ति, समानिक शक्ति, सब उसके ही रूप हैं। अगर हम अपनी संकल्प शक्ति को बचाकर रखें, तो संकल्प शक्ति के द्वारा सारे काम किए जा सकते हैं। परंतु कहीं कहीं हम बड़े बड़े नुकसान, बड़े छोटे छोटी बातों में संकल्पों के बड़े बड़े नुकसान कर लेते हैं। हम जिसको बड़ा नुकसान समझ रहे हैं, वो संकल्प शक्ति के आगे बहुत छोटा नुकसान होता है। मान लो आपका खाते में 100 रुपए की ऊपर नीचे हो रहा है, आपके समझ में नहीं आ रहा, 100 रुपए मिल नहीं रहे खाते में, कहीं कमी पड़ रही या ज्यादा हो रहा है, आपको ठीक करना है, और आप 4 घंटे उलझन में लगे हुए हैं, पलट रहे हैं अपने खाते के पेज और कुछ समझ में नहीं आ रहा, परेशान हो रहे हैं, और 4 घंटे में आपने कई हजार संकल्प नष्ट कर दिए। कहीं 100 रुपए बचाने के लिए हजारों संकल्प नष्ट किए जाते हैं, और मनुष्य को ये पता नहीं चलता कि हजारों संकल्प नष्ट करना कितनी बड़ी संपत्ति की हानि है। हम अपनी संपत्ति को नष्ट कर रहे हैं, संकल्प शक्ति को, इसलिए जीवन कठिन बनता जा रहा है। आज संसार में किसी मनुष्य को इसका कोई ज्ञान नहीं है, और ब्राह्मणों को ज्ञान है, तो इस पर ध्यान देना चाहिए कि और कुछ नष्ट हो रहा हो, पर संकल्प शक्ति को अगर हम बचा सके तो हमारी बहुत बड़ी प्राप्ति होगी। संकल्प शक्ति किसी कारण से नष्ट न हो तो जीवन सरल बन जाएगा, ये हमारी तपस्या की एक बहुत अच्छी सफलता होगी। इसके आगे हम चलें, हमारा सारा जीवन लौकिक और अलौकिक सहज होता जा रहा हो, ये हमारी तपस्या का प्रत्यक्ष स्वरूप होगा। कईयों को ये अनुभव हुए कि जो जो तपस्या की त्यों त्यों क्या हुआ, त्यों तो समस्याएं भी बढ़ी, तो कई लोग परेशान हुए, कई ब्राह्मण परेशान हुए हैं। अच्छी तपस्या आई, जिस दिन से तपस्या वर्ष डिक्लेयर हुआ, कहा कि तपस्या है, हमारी तो समस्याओं ने घेरा डाला हुआ है, एक जाए दूसरी आए, वो उसको निकाले तीसरी आए, मुश्किल हो गई है। और कई तो सच है ये बात के इंतजार कर रहे थे कि कब ये 14 मास पूरे हों और ये बला टले, ऐसा भी हो गया है। क्यों ऐसा हुआ? बहुतों के साथ हुआ, कोई 2-4 नहीं, कम से कम 20% ब्राह्मणों को ये अनुभव रहा है सारी दुनिया में कि तपस्या की परिभाषा ही समस्या हो गई है। इसलिए कईयों को तपस्या शब्द अच्छा ही नहीं लगा। क्यों हुआ, समस्याएं क्यों बढ़ी? क्योंकि पाप का खाता बहुत था, और जैसे जैसे तपस्या हुई तो सारा पाप निकल के सामने आने लगा। ले रहा था विदाई, लेकिन विदाई लेने से पहले एक टक्कर लगा गया, बस यही हुआ है और कुछ नहीं। इसलिए उससे घबराने की आवश्यकता नहीं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है होम्योपैथी में, तो खास ऐसा होता है, दवाई देते हैं ना होम्योपैथी, छोटी गोली, गोलियां खाने से पहले रोग बढ़ते हैं। कोई कोई जिनको पता नहीं होता वो छोड़ देते हैं कि डॉक्टर भी खराब और गोली भी खराब, ऐसी गोलियां नहीं खानी चाहिए जिससे रोग बढ़ने लगे, परंतु वही दवाई फिर उस रोग को संपूर्णतः नष्ट कर देती है। तो अगर किसी ने समस्याओं को बढ़ता देखकर तपस्या छोड़ दी तो समस्या फिर नीचे चली गई है, दब गई है, नष्ट नहीं हुई। और फिर जब वो कभी तपस्या करेंगे विनाश के समय, तो उनके सामने फिर समस्याएं होंगी, जो बड़ा विकराल समय होगा। अब तो सहयोग है बहुत कुछ, बाबा का भी सहयोग है, परिवार का भी सहयोग, अपने पास भी बहुत कुछ है, समस्याओं को सहज खत्म किया जा सकता है। इसलिए समस्याओं से घबराने की आवश्यकता नहीं। कईयों की कर्मों की गति ही ऐसी है कि जिस क्षण वो तेज पुरुषार्थ करेंगे उस क्षण उनके सामने समस्याएं आ खड़ी होंगी। आ खड़ी होने का अर्थ है विदाई लेंगी, लेकिन एक बार अपना रूप दिखाएंगी। इसलिए उनको विदाई देने के लिए हिम्मत के साथ अपनी तपस्या को चालू रखेंगे तो थोड़े ही समय में अनुभव हो जाएगा कि समस्याएं मैदान छोड़ गई हैं। तो तपस्या हमारे जीवन को सरल बनाए, समस्याओं से मुक्त। और इसके लिए यह आवश्यक है कि स्वयं तपस्या हमारे लिए एक समस्या न हो, स्वयं तपस्या हमारे लिए एक सरल आनंद का साधन हो। और ये तब होता है जब हमने अपनी बुद्धि को भटकने से रोका होगा। बुद्धि को भटकाना या भटकने से रोकना, ये बात कहनी तो बड़ी सहज होती है, लेकिन जब ये भटकती है तो इसको रोकना कैसा होता है? हवा को रोकने के समान लगता है कि ये बिल्कुल मुश्किल काम है, असंभव। परंतु अगर सूक्ष्मता से हम देखें, अपना निरीक्षण करें, तो हमें पता चलता है कि मन को हम स्वयं ही भगाते हैं। हमने बहुत सारे दरवाजे खोले हुए हैं, किनारे पकड़े हुए हैं संसार में, जिनके लिए बाबा ने हमें मना किया है, जिनके लिए बताया है कि इधर अगर तुम जाओगे तो भटक जाओगे, इधर अंधकार है, इधर कांटे हैं, इधर माया है, इधर तूफान है, लेकिन हम फिर उधर जाते हैं, क्योंकि हमने जन्म जन्म उन बुराइयों में ही कुछ आनंद लिया है, बुराइयों में आनंद लिया है। इसलिए उस क्षणिक आनंद को, उस थोथे आनंद को छोड़ा नहीं जा रहा है। आत्मा किनारे पकड़े रहती है। हर एक अगर हम अपने को सूक्ष्मता से देखें तो पता चलेगा कितने ही किनारे हम सबने पकड़े हुए हैं, पकड़े हैं बहुत किनारे। और किनारे पकड़ने का अर्थ है कि उन किनारों को हमने अपना सहारा समझा हुआ है कि यही मेरा जीने का सहारा है। बाबा तो है, ठीक है, बाबा तो है ही अपना, बाकी ये सब भी अपना है। तो दो चीजों को अपना बनाया हुआ है और फिर एक भी अपनी नहीं बनती। इसलिए जो भी किनारे सहारे समझकर हमने पकड़े हुए हैं, किसी ने उदाहरण के लिए अच्छे भोजन को अपना सहारा बनाया हुआ है, बस जीवन का आनंद भोजन ही तो है, कमाते किस लिए हैं? अगर भोजन भी अच्छा न खाया तो बाकी इस जीवन का आनंद क्या रहा? ये ठीक है कि भोजन अच्छा खाना चाहिए, ये नहीं कि संन्यास कर देना चाहिए, लेकिन भोजन के पीछे अगर हमारी शक्तियां नष्ट हो रही हो, सारा दिन हमारी संकल्प शक्ति भोजन के पीछे ही लगी हुई हो, तो ये किनारा हमारा असली सहारा नहीं बनता, हमारे असली सहारे को नष्ट करने वाला बन जाता है। तो किसी ने जीभ के रस को सहारा बनाया हुआ है, किसी ने मन के किसी रस को, किसी ने और किसी वैभव संपत्ति को, किसी ने किसी मनुष्य को, दैहिक संबंधों को अपना सहारा बनाया हुआ है। और ये सहारे जो समय पर हमारा साथ छोड़ जाते हैं, ये इन सहारों की गति है कि सारे ही सांसारिक सहारे समय पर हमारा साथ छोड़ जाते हैं, ये सत्य है। इसलिए उनके द्वारा हमें कष्ट ही प्राप्त होता है, आनंद नहीं। तो हमें अपनी तपस्या को आगे बढ़ाने के लिए भी और तपस्या का असली सुख प्राप्त करने के लिए भी ये चेक करना है कि हमारी कर्मेंद्रियों ने कहीं कोई सहारे तो नहीं बनाए हुए हैं, कर्मेंद्रियां रसों में तो नहीं उलझी हुई हैं, कौन कौन से रस हमने अपने जीवन से लटकाए हुए हैं, लिप्त हैं हम सब, सभी ये स्वयं से स्वयं चेक कर लें। तो न हमारी बुद्धि खाने में जा रही हो, और दूसरा बहुत बड़ा रस जो आजकल का बड़ा प्रसिद्ध रस हो गया है, सुनने का रस। घर घर में टीवी आ गई है, न चाहते भी सुनना पड़ता है, मेहमानों के साथ भी बैठना पड़ता है, तो हम कहा करते हैं, हमें लगा जब ये टीवी घर घर में आई कि रावण ने ये अपनी अंतिम चाल चली है युद्ध में, कि अब देखें तुम बचकर कहां जाओगे। कहते थे ना पिक्चर हॉल में नहीं जाएंगे, अब तुम्हारे घर में ही पिक्चर आएगी। तुम कहते थे हम ये गंदे चित्र नहीं देखेंगे, अब तुम्हारे घर में आएंगे, अब देखो तुम बच के कहां जाते हो। तो कौन माया की सूक्ष्म चाल को समझते हैं? माया की सूक्ष्म चाल को समझना, माया के नॉलेजफुल होना, माया का संपूर्ण ज्ञान समझ लेना, किस किस रूप से माया आती है, ये भी हमारे ज्ञानी होने का एक लक्षण है। तो कानों का रस जो आधार बन जाता है कि क्या करें, थक जो गए सारा दिन तो कुछ सुन लेंगे तो फ्रेश हो जाएंगे, नींद अच्छी आ जाएगी। परंतु जब से टीवी आई है नींद का रोग बढ़ा है। आप संसार का निरीक्षण कर लें, सर्वे कर लें, तो जब से घर घर में टीवी आई नींद न आना अधिक समस्या बन गई है, क्योंकि जो चीज हम सुन रहे हैं वो आत्मा की वास्तविक नेचर के विरुद्ध है, आत्मा जो चाह रही है उसके विरुद्ध है। तो वो ऐसे ही हो जाता है जैसे कांटों पर सोना, बाहर से लगता है मनोरंजन थोड़े समय के लिए, और जब सोने जाते हैं तो वो चीजें चुभने लगती हैं। इसलिए सुनने का रस, देखने का रस, किसी को बोलने का रस, किसी को बहुत ज्यादा पढ़ने का रस, व्यर्थ की पुस्तकें मैगजीन्स आजकल बहुत हैं, जिनको पढ़कर मनुष्य अपने अंदर स्वयं क्या डालता है, गंदगी डालता है, किचरा। और अगर हम बाहर की ऐसी गंदी पुस्तकें पढ़ते हों तो हमें इस बात का अच्छी तरह ज्ञान होना चाहिए कि हमारी बुद्धि कभी भी एकाग्र नहीं होगी। अगर हमें ये ज्ञान है कि एकाग्रता बहुत बड़ी शक्ति है, संकल्प शक्ति अर्थात एकाग्रता की शक्ति, तो हमें इस माया से, ये व्यर्थ की बातें पढ़ने की जो माया हमने अपने घर में पैदा की है, इससे अपने को मुक्त कर लेना चाहिए। इससे ज्ञान नहीं बढ़ता है, अज्ञान बढ़ रहा है। कई लोग ये सोचते हैं कि हमारा ज्ञान बढ़ेगा हम बहुत कुछ पढ़ लें, और उन्हें प्रैक्टिकल स्वयं में भी लगता है कि विवेक नहीं बढ़ता, अज्ञान बढ़ता है, उलझने बढ़ती हैं, मन अस्थिर हो जाता है। और वो जिन्हें योग में सफलता पानी है, जिन्हें अपने को एकाग्रचित करना है, जिन्हें ऊंची ऊंची सिद्धियां पानी हो, जिन्हें संसार के सामने प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाना हो बाप का, संसार बाप को देखे हम सब में, उन्हें इस चीज से मुक्त हो जाना चाहिए। तो आप सभी स्वयं समझदार हैं, अपनी प्लानिंग खुद कर लें कि वैसे तो हम सब कह देते हैं कि योग के लिए बहन जी टाइम नहीं मिलता, लेकिन किताबें पढ़ने के लिए घंटा दो घंटा तो आराम से मिलता है। इसलिए टाइम की कमी किसी के पास नहीं होती, कमी होती है टाइम के सदुपयोग करने के ज्ञान की। इस तरह हम अपने तपस्वी जीवन को निरंतर आगे बढ़ाएं, हमारा जीवन सरल भी हो, उत्तेजनाओं से मुक्त हो, किनारे जो हमने पकड़े हुए वो छूट गए हों, और हमारा संपूर्ण तपस्वी जीवन सहज योगी जीवन में बदल गया हो। जैसे हमें ये महसूस होने लगे कि बाबा अपना है, वैसे ही ये भी महसूस होने लगे मैं कौन हूँ, कौन हूँ मैं। यही उत्तर नहीं, केवल मैं आत्मा हूँ तो ये महसूस होने लगे कि मैं इस देह से भिन्न हूँ। केवल ज्ञान न रह जाए, वो ज्ञान तो भक्ति सार हूँ, ये महसूस होने लगे, या मैं आत्मा इस देह में अवतरित फरिश्ता हूँ, ये महसूस होने लगे, या मैं आत्मा महान आत्मा हूँ, परम पवित्र आत्मा हूँ, ये अनुभव होने लगे। कोई एक चीज हमारे पास दृढ़ता पूर्वक जीवन में अवश्य आ जाए, ये हमारी तपस्या का स्वरूप हो। ऐसा ना हो कि योग तो हम लगाते आ रहे हैं, रोज सवेरे भी बहुत उठ रहे हैं, परंतु हम केवल अभ्यास कर रहे हैं, केवल अभ्यास नहीं, अभ्यास का स्वरूप बिल्कुल अलग महसूस होने लगे कि मैं अलग और मेरा देह अलग, आत्मा का स्पष्ट दर्शन होता रहे। बाबा की अभी अव्यक्त मुरली थी, उसमें बाबा ने कहा सोमवार को जो रिवाइज होती है, कि अपना स्वरूप आत्मिक स्वरूप ऐसे ही दिखाई देने लगे जैसे ये देह दिखाई देता है, और जिसको अपना आत्मिक स्वरूप जितना स्पष्ट दिखाई देता रहेगा, उसको अपने आदि के संस्कार, सतयुग के संस्कार अपने सामने सहज स्पष्ट नजर आने लगेंगे, अर्थात हमारा भविष्य क्या है ये हमें स्पष्ट होता जाएगा। तो इस तपस्या वर्ष में और आगे भी तपस्या के काल में हम सभी को अपनी ये चेकिंग करनी है कि हमारी कर्मेंद्रियां शीतल, मन निर्मल और शक्तिशाली होता जा रहा हो, हमारी भावनाएं बदल रही हो, केवल योग न हो रहा हो, भावनाएं बदल रही हो। जो अब की मुरली में था, आखिरी अव्यक्त मुरली में, शुभ भावनाओं और शुभ कामनाओं के द्वारा ही सर्वश्रेष्ठ बेहद की सेवा होगी। हमारी भावनाएं बदली हो और हमारी भावनाएं ही, हमें ये याद रखना चाहिए, हमारी भावनाएं ही हमारे सुखों का या दुखों का कारण है। दूसरा व्यक्ति अगर हमसे गलत व्यवहार कर रहा है, दूसरा व्यक्ति अगर हमारी बात नहीं मान रहा है, दूसरा व्यक्ति अगर हमें सता रहा है, हमसे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, तो ये हमारी अपनी भावनाओं का रिटर्न है, अपनी भावनाओं का उत्तर है उनकी ओर से। अगर हमारी भावनाएं सबके लिए श्रेष्ठ हो जाएं, तो ये सभी बातें हमारे जीवन के अनुभवों से समाप्त हो जाएंगी, सब हमारे हो जाएंगे। जैसे बाबा हमारा होगा, हमें ये महसूस होने लगेगा कि सब भी हमारे हैं। लगता है ऐसा जब से ज्ञान में आए कि जिनका बीज हो सारा वृक्ष उनका है, जिन्हें बीज साथ दे रहा हो सारा वृक्ष उन्हें साथ देगा, जिनका सहयोगी भगवान हो सारा संसार उनका सहयोगी होगा। लगता है ऐसा? ये लगना चाहिए। अगर ऐसा नहीं लगता, अगर ये लगता है कि जब से ज्ञान में आए जो अपने थे वो भी पराये हो गए, लगता है ना किसी किसी को ऐसा, अकेले ज्ञान में आए जिधर जाओ गाली सुनने को मिलती है, जिधर जाओ विरोध ही सुनने को मिलता है। लोग इंतजार करते हैं कब इनसे कुछ गलती हो और हम अपना गुस्सा बाहर निकालें। तो ये हो रहा है, या जैसे जैसे बाबा अपना होता जाता है तो सारा संसार अपना हो रहा है, ये अनुभव होना चाहिए। अगर विरोध है तो उसकी पहली चेकिंग हम करें कि कहां हमारे अपने मन में तो विरोध नहीं है। हमारे अपने संबंध में बाबा से हमारा संबंध तो ठीक है, अगर ये संबंध ठीक होगा तो संसार से हमारे संबंध अवश्य ठीक होंगे। अगर हम बाबा के सहयोगी और बाबा हमारा सहयोगी तो कोई आत्मा हमसे विरोध कर ही नहीं पाएगी। इस तरह अपनी श्रेष्ठ भावनाओं के द्वारा अपने संबंधों को मधुर बनाएं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे मन में दूसरों के प्रति अच्छी भावनाएं हों और दूसरों के मन में हमारे प्रति स्नेह न हो, ऐसा असंभव है। हमारी भावनाएं अच्छी होती जाएंगी, दूसरों का स्नेह बढ़ता जाएगा, परंतु आवश्यकता इसकी है। कई कई लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारी भावनाएं तो बहुत ही अच्छी हैं, परंतु ये बदलते दिखाई नहीं देते। क्यों होता है ऐसा अनुभव? है कुछ रहस्य इसके पीछे? ऐसा भी तो लगता है कहीं कहीं। क्या रहस्य है इसके पीछे? नहीं, शुभ संकल्प है। हमारे शुभ संकल्प में पावर नहीं है, योग की प्योरिटी की पावर नहीं है, तो शुभ संकल्प उस तक पहुंचता नहीं, बीच में ही कट जाता है उसकी ईर्ष्या से। उसकी ईर्ष्या के वाइब्रेशंस हमारे शुभ संकल्पों को वापस कर देते हैं। तो इस तपस्या वर्ष में अपनी भावनाओं को फिर से देख लें कि सबके प्रति हमारे मन में एक निर्मल स्नेह, निश्चल स्नेह भरा है, भर गया है स्नेह। ये बहुत ही अच्छी बात है और बड़ी सरल बात है, बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। हमारे मन में अगर सबके प्रति स्नेह नहीं भरा तो जो प्रेम का सागर है बाबा, उससे हमारा संबंध कटता रहेगा। क्योंकि हमारा अपना स्नेह जब घृणा से भरपूर है, मिक्स है, तो वो स्नेह ऊपर से भी जुड़ता नहीं है। तो हमारा स्नेह घृणाओं से तो मिक्स नहीं है। दो आत्माओं के लिए स्नेह, दो के लिए घृणा, कुछ के लिए अच्छी भावनाएं, कुछ के लिए थोड़ी सी बुरी भावनाएं, ये तो नहीं हो रही है। तो भावनाओं की चेकिंग के साथ अब एक अंतिम बात और आप सबके सामने, कि इस तपस्या का एक स्वरूप हमारे जीवन में ये भी होना चाहिए कि हमारा जीवन, मन, बुद्धि दिनों दिन शक्तिशाली होता चले। हमें अपने को लगे कि हम निर्बल नहीं हैं, हम कमजोर नहीं हैं। भगवान के बच्चे कमजोर नहीं होते। हमें ये महसूस होता चले कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं, कम से कम पुरुषार्थ। ये बात सत्य हो जाएगी कि जो पुरुषार्थ हम चाहें वो कर पाएं, उस दिन इस सारे संसार के लिए भी जो हम चाहेंगे वो कर पाएंगे। क्योंकि हम अपने लिए वो नहीं कर पाते जो हम चाहते हैं, इसलिए दूसरों के लिए, संसार के लिए भी वो अच्छे कार्य हम नहीं कर पाते जो हम चाहते हैं। इसलिए स्वयं को दिनों दिन शक्तिशाली बनाते चलना है। ऐसा न लगे कि माया के इस युद्ध में आत्मा अपनी शक्तियों को खोती जा रही है, माया के इस युद्ध में हम अपनी खुशियों को खोते जा रहे हों। हमारी खुशी भी दिनों दिन बढ़ रही हो, हमारा नशा भी दिनों दिन बढ़ रहा हो, ये दोनों चीज बढ़ती जा रही हो, और ये दोनों चीजों का बढ़ना ही सिद्ध करेगा कि हमारी शक्तियां बढ़ रही हैं। और शक्तियां बढ़ रही हैं, इसका एक वो भी प्रूफ होगा कि हमारा क्रोध शांत होता जाएगा। जितनी जो आत्मा शक्तिशाली उतना ही क्रोध से मुक्त, और जितनी जो आत्मा क्रोध से मुक्त वो एक प्रूफ होगा कि काम से भी उतनी ही मुक्त हो गई है, पवित्रता उतनी ही बढ़ गई है। तो इस तरह हमारा तपस्वी जीवन प्रैक्टिकल में योगी जीवन हो। जो बाबा के महावाक्य हैं, योग लगाने वाले नहीं, योगी जीवन। दूसरों को लगे कि इनका जीवन योगी जीवन है, हमसे भिन्न है। जो आज बाबा की तपस्या की पॉइंट में था कि तुम्हारे वाइब्रेशंस दूसरों के लिए सहारा बन जाएं, तुम्हारे संकल्प दूसरों को बल देने वाले बन जाएं, तुम्हारी वृत्ति दूसरों को बदलने वाली बन जाए, ये है हमारा असली तपस्या का स्वरूप। तो कल सवेरे उठते ही, थकान तो नहीं है सभी को, आए हैं होगी तो, वैसे तो मधुबन में आते ही फ्रेश हो जाते हैं। मधुबन ऐसी भूमि है, आपने रामायण में कहीं सुना हो कि एक ऋषि का आश्रम ऐसा था कि जहां जाते ही मनुष्य की हिंसा की भावना खत्म हो जाती थी। और बाबा का स्थान कैसा है, जहां आते ही थकान मिट जाती है, जहां आते ही चिंताएं नष्ट हो जाती हैं, जहां आते ही जीवन आनंद से भरपूर लगने लगता है। ऐसी सर्वश्रेष्ठ भूमि पर, जैसी भूमि संसार में चारों युगों में कहीं नहीं होती, चारों युगों में भी नहीं, ऐसी सर्वश्रेष्ठ भूमि पर हम सब हैं। तो कल सवेरे उठते ही सभी इस खुशी में अपने को लाएंगे, इस नशे में अपने को लाएंगे कि भगवान हमारा हो गया है, अपना नजर आए और लगे कि उसकी किरणें, ज्ञान सूर्य की किरणें, वो निरंतर हमारे ऊपर डाल रहा है। तो कल सवेरे यहाँ आके बैठने पर नहीं, केवल आंख खुलते ही मन में ये संकल्प हो कि भगवान मेरा, और वो मेरा तो उसका सब कुछ भी मेरा, और उसकी किरणें निरंतर मेरे ऊपर पड़ रही हैं। तो अभी हम सब 3 मिनट के लिए इसी स्थिति में बैठेंगे कि बाबा की निरंतर किरणें हमारे ऊपर पड़ रही हैं।
ओम शांति।